एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं जिसने साहित्य जगत में सचमुच हलचल मचा दी थी, जेएम कोएत्ज़ी का डिस्क्लेंस यानी अपमान।
हाँ, कोएत्ज़ी दक्षिण अफ्रीकी मूल के लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं 2003 के।
बिल्कुल, और दो बार बुकर पुरस्कार भी। मतलब उनकी प्रतिभा का लोहा तो सब मानते हैं। उनका लेखन बहुत, कह सकते हैं, सधा हुआ, मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा होता है
और नैतिक दुविधाओं को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखते हैं।
सही कहा, उन्होंने रंग भेद का वो मुश्किल दौर बहुत करीब से देखा और जिया भी, और उसका असर उनके लेखन में साफ झलकता है।
तो इट डिसग्रेस, ये कब आया?
ये आया 1999 में, यानी जब दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद से आजाद हुए सिर्फ 5 साल हुए थे।
अच्छा, तो वो तो बड़ा ही उथल पुथल का दौर रहा होगा, उम्मीदें भी और डर भी।
हाँ बिल्कुल, सुलह कैसे होगी, न्याय का मतलब क्या होगा, बदलाव कैसे आएगा, ये सारे सवाल हवा में थे।
और इसी माहौल में ये उपन्यास आता है।
और आते ही विवादों में घिर गया। कुछ ने इसकी बेबाक सच्चाई की तारीफ की, तो तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी ANC ने, उन्होंने इसकी आलोचना की, कहा कि ये नए दक्षिण अफ्रीका की नकारात्मक तस्वीर पेश करता है।
लेकिन फिर भी इसे बुकर मिला 1999 का।
हाँ मिला। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस उपन्यास की कहानी, इसके किरदारों के उतार चढ़ाव, इसके जो मुख्य विषय हैं और इसके गहरे अर्थ, उनको परत दर परत खोलकर समझें।
क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी के जलील होने की कहानी तो नहीं लगती?
नहीं बिल्कुल नहीं, ये एक बदलते हुए देश की कहानी भी है, उसके संक्रमण काल की।
तो कहानी शुरू होती है केप टाउन से। डेविड लूरी, 52 साल का प्रोफेसर।
हाँ, कम्युनिकेशन और रोमांटिक कवियों पर पढ़ाता है, 2 बार तलाक हो चुका है, थोड़ा अलग थलग सा रहता है।
अपनी भावनाओं को जैसे दुनिया से छुपा कर रखता है, एक तरह का भावनात्मक अलगाव है। और अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए वो हर हफ्ते सोराया नाम की एक वेश्या के पास जाता है। रिश्ता पूरी तरह लेन देन वाला, कोई भावना नहीं।
हाँ, ये डेविड का किरदार शुरू से ही ध्यान खींचता है। उसमें एक किस्म का बौद्धिक अहंकार है ना, जैसे वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है।
बिल्कुल, और रिश्तों में भी सत्ता का खेल दिखता है। ये जो सोराया वाला रिश्ता है,
हाँ, वो सिर्फ जरूरत नहीं, वो एक तरह का मालिकाना हक या कंट्रोल की भावना भी दिखाता है। वो इच्छा के अधिकार, मतलब राइट ऑफ डिजायर जैसी बातों में यकीन रखता है।
ये फलसफा क्या है असल में?
ये उसे अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपने की जैसे इजाजत देता है।
हाँ, एक तरह से
बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा।
और यही सोच उसे आगे मुश्किल में डालती है। जब सोराया उससे मिलना बंद कर देती है, तो उसका ध्यान अपनी ही एक छात्रा मिलानी इसाक्स पर जाता है। वो उसके युवा आकर्षण से प्रभावित होता है और बिना ज्यादा सोचे समझे उसके साथ एक संबंध बना लेता है।
ये रिश्ता तो शक्ति के लिहाज से बहुत असंतुलित हुआ फिर।
बिल्कुल,
बहुत छोटा भी रहता है। डेविड इसे अपनी नज़र में ईरोस का उपहार कहता है, मतलब एक कुदरती जुनून, लेकिन असल में ये साफ तौर पर अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल है।
और यहीं से उसका पतन शुरू होता है ना, क्योंकि मेलानी इस रिश्ते से सहज नहीं है।
हाँ, मेलानी इसकी शिकायत कर देती है। मामला पहुंचता है यूनिवर्सिटी की अनुशासनात्मक समिति के सामने।
अच्छा,
और वहाँ डेविड का रवैया कैसा रहता है
वो देखने लायक है। समिति चाहती है कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, पछतावा दिखाए,
जो शायद सामान्य प्रतिक्रिया होती।
हाँ, पर डेविड इसे एक ढोंग, एक खोखला दिखावा मानता है। वो साफ इनकार कर देता है।
इनकार? मतलब वो मानता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया?
नहीं, वो अपना अपराध तो मान लेता है कि हाँ संबंध था, लेकिन किसी भी तरह की माफी या काउंसलिंग से मना कर देता है। उसका तर्क होता है, मैं ईरोस का सेवक था।
ईरोस का सेवक, वाह।
आखिरकार वो इस्तीफा दे देता है। उसे लगता है कि ये उसने कोई सैद्धांतिक कदम उठाया है, पर असल में ये उसके सार्वजनिक अपमान की शुरुआत है, पहला बड़ा झटका।
ये दिलचस्प है कि वो पश्चाताप को प्रदर्शन समझता है, ये उसके गहरे अहंकार को दिखाता है ना?
हाँ बिल्कुल,
जैसे वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसके किए का मिलानी पर क्या असर हुआ होगा। वो अपनी बौद्धिक दुनिया में इतना खोया है कि मानवीय भावनाओं से, जिम्मेदारियों से जैसे कट गया है।
सही कहा, ये सिर्फ नौकरी खोना नहीं है, ये उसकी नैतिकता और भावनाओं के खोखलेपन का सबूत है।
और यहीं से उसके अपमान की कहानी और गहराती जाती है।
बिल्कुल, नौकरी गई, इज्जत गई। तो डेविड केप टाउन छोड़कर ईस्टर्न केप चला जाता है अपनी बेटी लूसी के पास।
लूसी जो अकेली रहती है वहां।
हाँ, एक छोटे से फार्म पर, कुत्तों का कैनल चलाती है, थोड़ी बहुत खेती करती है। ये माहौल डेविड के शहरी जीवन से एकदम अलग है, ग्रामीण, साधारण।
और ये ईस्टर्न केप, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, इसका अपना एक इतिहास है। वो इलाका जहां श्वेत और अश्वेत समुदायों के बीच पुराने जमीनी झगड़े, सीमा युद्ध, नस्लीय तनाव, ये सब रहा है।
तो डेविड का वहां जाना सिर्फ जगह बदलना नहीं है?
नहीं, ये एक तरह से इतिहास और जमीनी हकीकत से सामना करना भी है। यहाँ का जीवन डेविड के शहरी नकाब को तोड़ने लगता है।
शुरुआत में डेविड को इस नई जिंदगी में एक अजीब सी शांति मिलती है। वो लूसी के साथ फार्म के कामों में हाथ बटाता है, कुत्तों की देखभाल, बाजार जाना,
शारीरिक मेहनत में सुकून मिलना।
हाँ, शायद वो जो उसे अपनी पुरानी जिंदगी में कभी नहीं मिला। साथ ही वो लॉर्ड बायरन पर एक ओपेरा लिखने की भी कोशिश करता है, शायद अपनी खोई हुई बौद्धिक पहचान को फिर से पाने का जरिया। बाप बेटी साथ रहते हैं, पर उनके बीच एक खामोशी है, एक अनकहा फासला साफ महसूस होता है।
और लूसी का किरदार भी डेविड से कितना अलग है, जमीन से जुड़ी हुई, प्रैक्टिकल, आत्मनिर्भर।
हाँ, और वो समलैंगिक है, उसने शहर से दूर ये जिंदगी चुनी है। उसकी जीवन शैली शायद नए दक्षिण अफ्रीका में जीने का एक अलग तरीका दिखाती है, जो समझौतों और यथार्थ पर टिका है।
और यहीं एक और अहम किरदार सामने आता है, पेट्रस।
हाँ, पेट्रस लूसी का पड़ोसी, पहले उसके यहाँ काम भी कर चुका है, पर अब वो धीरे धीरे अपनी जमीन बढ़ा रहा है, अपनी हैसियत मजबूत कर रहा है। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी अस्पष्टता है, एक उभरती हुई ताकत का एहसास।
और ये एहसास आगे चलकर कहानी में बहुत मायने रखता है।
बिल्कुल, क्योंकि ये जो ऊपर से शांत दिख रहा माहौल है, ये ज्यादा देर टिकता नहीं है।
क्या होता है?
एक दोपहर तीन अश्वेत नौजवान फार्म पर आते हैं। पहले तो वो फोन इस्तेमाल करने का बहाना बनाते हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही होता है।
ओह।
वो डेविड पर हमला करते हैं, उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं, उस पर कोई केमिकल डालकर आग लगा देते हैं। वो थोड़ा जल जाता है, डेविड पूरी तरह बेबस महसूस करता है।
और लूसी?
बलात्कार किया जाता है। कोएजी इस भयानक घटना का वर्णन बहुत ही ठंडे, सपाट अंदाज में करते हैं, बिना किसी भावुकता के, जो पढ़ने वाले को और ज्यादा झिझोड़ देता है।
ये हमला, ये उपन्यास का केंद्रीय बिंदु है।
हाँ।
वो घटना जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है।
हाँ।
ये सिर्फ एक आपराधिक हिंसा नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं इतिहास का गुस्सा, सदियों का दबा हुआ आक्रोश, वो फूटता हुआ नजर आता है।
ये उस सामाजिक व्यवस्था का पलटना है जिसे डेविड जैसे लोग अपनी जागीर समझते थे। हाँ, बिल्कुल, ताकत का खेल यहाँ क्रूरता से उलट जाता है।
और कोएत्सी बिना कहे ये सब कह जाते हैं, यही उनकी खूबी है।
और हमले के बाद लूसी का जो रवैया रहता है, वो डेविड को और शायद पाठक को भी और ज्यादा परेशान कर देता है।
क्या करती है वो?
वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से साफ मना कर देती है। उसे लगता है इससे कुछ नहीं होगा, सिस्टम पर भरोसा नहीं और जिल्लत मिलेगी।
अच्छा।
वो बस इतना कहती है, ये खत्म हो गया है और मैं जिंदा हूँ। वो इस हादसे को जैसे अपने अंदर समेट लेती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है।
ये बहुत मुश्किल फैसला है। क्या ये ताकत है या मजबूरी, या शायद दोनों का मिलाजुला रूप?
कहना मुश्किल है। और कहानी और जटिल हो जाती है जब पता चलता है कि लूसी उस हमले के बाद गर्भवती हो गई है।
ओह।
और वो बच्चे को रखने का फैसला करती है। ये उसके जीने के फलसफे का हिस्सा है, परिणाम भुगतना। उसका मानना है कि जमीन पर रहने की यह कीमत है जिसे उसे चुकाना होगा।
और यहीं बाप देती के बीच का तनाव चरम पर पहुंच जाता होगा।
बिल्कुल, डेविड न्याय की अपनी पारंपरिक सोच पर अड़ा है, अपराधी पकड़े जाएं, सजा मिले।
उसे लगता होगा लूसी का चुप रहना, बच्चे को रखना, ये सब गलत है, हार मान लेना है।
हाँ, लेकिन लूसी की खामोशी और यथार्थ को स्वीकार करने की उसकी क्षमता, वो डेविड की समझ से परे है। उनके बीच बातचीत लगभग बंद हो जाती है।
न्याय को लेकर दोनों की सोच कितनी अलग। लूसी की चुप्पी क्या उसके विरोध का तरीका है, या ज्ञान का संकेत, या फिर खुद को तबाह करने का रास्ता?
कोएजी हमें कोई आसान जवाब नहीं देते, बस इन सवालों के साथ छोड़ देते हैं। और इसी उथल पुथल के बीच पेट्रस का किरदार और उभर कर सामने आता है, उसका दबदबा बढ़ता है।
हाँ, पेट्रस।
वो लूसी और डेविड को अपनी सुरक्षा देने की पेशकश करता है। फिर धीरे से ये बात खुलती है कि हमला करने वाले लड़कों में से एक पोलेक्स पेट्रस का रिश्तेदार है और अब पेट्रस के साथ ही रह रहा है।
क्या? ये तो बहुत ही पेचीदा स्थिति हो गई।
और फिर पेट्रस एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जो डेविड को हिलाकर रख देता है।
हाँ, वो प्रस्ताव तो कहानी का एक और अहम मोड़ है। क्या प्रस्ताव रखता है वो?
पेट्रस चाहता है कि लूसी उसकी तीसरी पत्नी बन जाए। ये कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं, बल्कि एक परंपरागत सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है।
तीसरी पत्नी?
हाँ, और अपनी जमीन भी उसके नाम कर दे। इसके बदले में पेट्रस उसे और उसके होने वाले बच्चे को सुरक्षा देगा, समाज में एक जगह देगा।
और लूसी, वो क्या करती है?
चौंकाने वाली बात यह है कि लूसी बहुत सोचने के बाद अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए इस इंतजाम को
मान लेती है।
डेविड के लिए ये तो शायद सबसे बड़ा अपमान होगा, उसकी दुनिया का पूरी तरह उलट जाना।
बिल्कुल,
पेट्रस का ये किरदार ये नए दक्षिण अफ्रीका की जटिल सच्चाई का प्रतीक बन जाता है ना। वो व्यावहारिक है, मौकापरस्त है, महत्वाकांक्षी है, अपने नियम खुद बना रहा है।
हाँ, वो पुराने सिस्टम के टूटने से जो जगह बनी है उसका फायदा उठा रहा है।
उसका प्रस्ताव मतलब वो एक ही वक्त में शोषण जैसा भी लगता है, और शायद पारंपरिक अफ्रीकी समाज के ढांचे में लूसी को एक सहारा देने की कोशिश भी।
कोएत्सी शायद यही दिखा रहे हैं कि नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण आदर्शों पर नहीं, बल्कि एक उलझी हुई, अवसरवादी और कभी कभी नैतिक रूप से संदिग्ध लगने वाली व्यावहारिकता पर हो रहा है, जहां पुराने पीड़ित अब ताकत के नए समीकरण बना रहे हैं। डेविड के लिए ये न सिर्फ बेटी का फैसला है, बल्कि उस पूरी दुनिया का अंत है जिसे वो जानता और समझता था।
और इस नई हकीकत को डेविड बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कुछ वक्त के लिए वापस केप टाउन लौट जाता है।
अच्छा,
वहाँ वो मिलानी इसाक्स के परिवार से मिलकर माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश बड़ी अजीब, दयनीय और बेअसर साबित होती है।
मतलब उसे कोई सुकून नहीं मिलता?
नहीं, उसे एहसास होता है कि कुछ जख्म सिर्फ शब्दों से नहीं भरते। ये मुलाकात उसकी अपनी गिरी हुई हालत को और उजागर कर देती है।
तो क्या वो वहीं रह जाता है या वापस आता है?
वो वापस ईस्टर्न केप लौटता है, लेकिन अब उसमें कुछ बदल चुका है।
क्या बदलाव आता है?
वो बेउशॉ नाम की एक महिला के एनिमल क्लिनिक में वॉलंटियर करने लगता है। बेउशॉ लावारिस, बीमार बूढ़े जानवरों की देखभाल करती है।
एनिमल क्लिनिक में डेविड लोरी?
हाँ, और अक्सर उन जानवरों को दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए इच्छा मृत्यु देती है। डेविड का काम इन्हीं जानवरों को उनके आखिरी सफर पर भेजने में मदद करना बन जाता है। लोग उसे डॉग मैन कहने लगते हैं।
ये एक बहुत बड़ा बदलाव है उसके किरदार में। कहाँ वो बौद्धिक अहंकार में जीने वाला प्रोफेसर और कहाँ ये जानवरों की खामोश सेवा। ये शायद उसके अपमान से विनम्रता की तरफ बढ़ने का एक धीमा, दर्दनाक और शायद अधूरा सफर है। बेवा शॉ और इन बेजुबान जानवरों की देखभाल करते हुए उसे शायद पहली बार बिना किसी स्वार्थ के सेवा और करुणा का अनुभव होता है।
ये वो करुणा है जिसमें अहंकार के लिए कोई जगह नहीं।
हाँ, इन जानवरों की पीड़ा जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है, कहीं ना कहीं समाज के हाशिए पर पड़े इंसानों की पीड़ा का भी आईना बन जाती है। शायद डेविड इन जानवरों में अपना ही अक्स देखता है, ठुकराया हुआ, शक्तिहीन।
हाँ, और उपन्यास का आखिरी दृश्य भी इसी एनिमल क्लिनिक में सेट है।
क्या होता है उसमें?
डेविड एक लंगड़े कुत्ते को क्लिनिक लाता है, जिससे उसे थोड़ा लगाव सा हो गया था। वो जानता है कि इस कुत्ते के बचने की कोई उम्मीद नहीं है।
वो उसे इच्छा मृत्यु के लिए बेवशॉ को सौंपता है,
और सौंपते हुए बस इतना कहता है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ।
ये वाक्य, इसमें बहुत वजन है। ये सिर्फ एक कुत्ते को छोड़ना नहीं है।
नहीं,
ये शायद अपनी उस पुरानी जिद को छोड़ना है, बचाने की जिद, नियंत्रण रखने की जिद, अधिकार जताने की जिद, अपने आखिरी लगाव को भी जाने देना।
पूरी तरह से विनम्र होकर अपनी हारी हुई शक्तिहीन स्थिति को स्वीकार कर लेना।
हाँ, शायद इसे ही एक मुश्किल अनुग्रह कहा जा सकता है, जो सब कुछ खो देने के बाद ही मिलता है। अपमान के अंधेरे से गुजरकर शायद उसे यहीं मुक्ति का, शांति का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है।
तो अगर हम इस उपन्यास के मुख्य धागों को एक साथ देखें, तो इसमें ताकत और शोषण के कई रूप दिखते हैं, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर। अपमान, शर्म और इनसे उबरने की जटिल राहें, जानवरों और इंसानी गरिमा के बीच का रिश्ता,
कामुकता, इच्छा और हिंसा का अंधेरा पहलू, और हाँ, भाषा या तर्क की सीमाएं भी, जो शायद हर जख्म को भर नहीं सकती।
ये उपन्यास पढ़ते हुए मन बेचैन हो जाता है। ये कोई आसान कहानी नहीं है, न ही ये कोई आसान जवाब देती है।
नैतिक रूप से बहुत उलझा हुआ है।
हाँ, पाठक भी कई बार डेविड की तरह ही बेबस, उलझन में और शायद गुस्से में भी महसूस करता है। ये न्याय, माफी, जख्म भरने के हमारे बने बनाए विचारों को सीधी चुनौती देता है।
ये सुकून नहीं देता, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देता है
देर तक, कि सही क्या है, गलत क्या है, और इंसान किन हालात में क्या बन सकता है।
शायद ये उपन्यास हमें सिखाता है कि इतिहास के गहरे जख्मों से उभरना कितना मुश्किल और दर्दनाक हो सकता है। इसके लिए शायद अपनी पुरानी पहचान, पुराने रुतबे, उनको छोड़ना पड़ता है।
हाँ, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, और शायद सच्ची करुणा और मन की शांति हमें सबसे अप्रत्याशित जगहों पर सबसे विनम्र हालात में ही मिलती है, जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे काबू में नहीं है, जब हम सचमुच छोड़ देते हैं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।